ریومرز نہ پھیلانا چاہتے ہیں نہ کوئی غلط خبر آپ تک دینا چاہتے ہیں، اسی لیے جناب امتیاز گل جیسے اہم اشخاص سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں. ابھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یونگ ٹاؤن ٹورانٹو.
Crampton has a population of over 800,000, but it only has one hospital. The Ontario Liberals created this mess, and under the Conservatives, it's only gotten worse. 3 years ago, Doug Ford promised shovels in the ground. 3 years later, nothing has been done. Doug Ford couldn't get it done, but Merritt Stiles and the Ontario NDP will. My name is Martin Singh, the Ontario NDP candidate in Brampton East. We will invest in healthcare and ensure Brampton has two hospitals.
Authorized by the TFO for the Martin Singh campaign.
ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਰਡਨ ਸੂਈਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਸੂਈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/gardensuites ਤੇ ਜਾਓ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। 9058747171।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773।
बसंत का मौसम आने वाला है, जिस कारण ब्रैम्पटन विच मनोरंजन प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लई खुले हैं। 17 फरवरी तो इन्हां प्रोग्रामां नूं ऑनलाइन देखो अते 3 मार्च नूं रजिस्ट्रेशन करो। खेल, स्टीम, आर्ट अते और बहुत कुछ। इस दे नाल ही 17 मार्च नूं स्विम अते स्केट लई रजिस्ट्रेशन करना ना भुल्यो। होर जानकारी लई brampton.ca/recreation ते जाओ।
एंड्रियो केनिया इंतखाब कीजिए 27 फरवरी को एंड्रियो केनिया का ब्रैम्पटन वेस्ट से।
एंड्रियो केनिया फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर जस्टिस क्रिटिक एंड पब्लिक सेफ्टी कमेटी मेंबर।
एंड्रियो केनिया की तरजीहात में पब्लिक सेफ्टी नंबर 1, इन्वेस्ट मोर मनी इन 911, इंक्रीज पुलिस फंडिंग, इन्वेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट टू फाइट द क्राइम,
3 फुली फंक्शनल हॉस्पिटल फॉर ब्रैम्पटन, एवरीवन हैज एक्सेस टू ए फैमिली डॉक्टर।
इनकम टैक्स को काटेंगे, रिमूव करेंगे HST, होम हीटिंग एंड हाइड्रो से डबल करेंगे amount of ODSP.
Fight for lower auto insurance rates in Brampton. Andrew will work hard to improve the education system.
Vote for Andrew Kenya in Brampton West. This is a paid commercial by Andrew Kenya office.
साल की सबसे बड़ी सेल बटाला सुपरमार्केट पर स्पेशल रमदान सेल। हर साल की तरह इस साल भी रमदान की पूरी ग्रोसरी करें बटाला सुपरमार्केट पर। जबरदस्त सेल ग्रोसरी के हर आइटम पर, खजूरें, मसाले, चावल, जूसेस, कुकिंग ऑयल, फ्रोजन आइटम्स, ताज़ा हलाल मीट्स और बहुत कुछ। सेल स्टार्टिंग फ्रॉम February 21st to March 9th, ओनली एट बटाला सुपरमार्केट, 200 मार्कम रोड, इंस्कारबो, 416-264-3111। रमदान सेल फ्लायर्स के लिए विजिट करें shopbatala.ca।
बटाला सुपरमार्केट। ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائیگر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور آج آپ کا ہمارا ساتھ تقریباً 6 بجے تک رہے گا. 5:45 تک آپ ڈائل پر سن سکیں گے, اس کے بعد آپ 6478724900 ڈائل کر کے ہماری نشریات 24 گھنٹے سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com اور ہمارا ٹیلی ویژن eawaz TV تمام ہی IPTV باکسز پر موجود ہے. اسے آپ اردو یا پاکستانی کیٹیگریز میں بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں. 6:00 تقریباً 4-5 منٹ پہ ٹاپ اپ دی آور بریک کے بعد ہم آپ کو ایک کرنٹ افیئر پروگرام دکھائیں گے, جس عارفہ مظفر صاحبہ اور شعیب شاہین صاحب جو کہ PTI کے لیڈرز ہیں, پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے ان کی تھوڑا ٹیک ان ہو گئی تھی فواد چودھری کے ساتھ, تو اس پر بھی ان سے کچھ بات چیت کی کہ بھائی ایسا کیا معاملات ہو گئے, ایسا آپ نے کیا کہہ دیا یا انہوں نے کیا کہہ دیا, تو یہ ساری تفصیلات انہوں نے پروگرام میں دیے. تو ہم تقریباً 6:05 پہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے. 7:00 بھولی بسری یادیں ایز یوزول ہمیشہ ایوری تھرسڈے لیاقت ملک صاحب ایز این پروڈیوسر آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں بھولی بسری یادیں, تو 7:00 آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے اور سن بھی سکیں گے. تو یہ تھی اب تک کی روپ ریکھا. تو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور جناب اب تک 5 نہیں ہوئے, میں بڑی یہ مہم میں جاری رکھوں گا, جب تک 5 نہیں ہوں گے تو آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ 5 ایٹ لیسٹ کر دیں پلیز, خدا را ویری ہمبل ریکویسٹ. چلیں جناب آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈبلیو ایس آج تو ہم دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے, یہ کیا چکور ہے؟
وہ کہتے ہیں نا کہ بس
برا وقت آ گیا ہے, برا وقت بتا کے نہیں آتا.
نہیں آتا
تمہارا جیسا ایک معصوم تھا نا بندہ, تو وہ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ میں 2 دن سے تم سے بات نہیں کر رہی ہوں تو تم کو کچھ کہنا نہیں ہے. کہتے ہیں تھینک یو.
میرے پاس یہ تھینک یو کا آپشن بھی نہیں.
اچھا, کیونکہ تمہیں اس پہ بھی مار پڑتی ہے.
12 گھنٹے سے زیادہ کا, 8-10 گھنٹے سے زیادہ کا بریک اپ جو ہے وہ
پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے,
ہے ہی نہیں, ڈکشنری میں ہی نہیں ہے.
اچھا اچھا اچھا,
اللہ ناراض
کیونکہ تم لیٹ جاتے ہو نا. بالکل ہی تم تو ایسے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے,
یہ میں تمام لوگوں سے جیسے بھی دیکھیں جھگڑے لڑائی تو ہوئی ہر جگہ ہی ہوتے رہتے ہیں, لیکن کوشش کریں گے اس کو 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہ چلنے دیں.
اچھا,
اللہ ناراض ہو جاتا ہے.
اچھا,
میاں بیوی ناراض ہوں تو اس پر اللہ ناراض ہوا, تو اللہ کو راضی رکھنے کا جو ہے نا وہ کوشش کریں تو
آپ بیوی راضی رہے.
نہیں, آپ جو آپ کی غلطی ہو نہ ہو, آپ ہیلو آئے کر لیں, اس کی غلطی نہ ہو, دونوں طرف.
اچھا,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کرنا ہے, لیکن بہرحال
تیرے کیس میں تو ہی کرتا ہے, مجھے پتا ہے.
یس, آلویز
آلویز تیرے جیسی فرما برداری ویسے اگر ہر بندے میں آ جائے, او ہو, یہ دنیا تو جو ہے نا یہ ڈورسے تو ہوئے نہیں, دنیا اتنی کوئی اچھی ہو جائے زندگی ہے نا. بہت فرما
بی پازیٹو,
بی پازیٹو
بلڈ گروپ جب بی پازیٹو.
ہاں ہاں ہاں, وہ ساڈا تو ہے ہی نیگیٹو,
کیا
کر سکتے ہیں نا. چلو چلو,
خبریں سنائے.
خبریں سناتے ہیں اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ پھر ایک ایکسپرٹ ہیں جو گند کیا کل پاکستان نے اور آج جو اچھا کام کیا انڈیا نے, اس پہ بات کرنے کے لیے ثاقب خان صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم ان سے بات کریں گے لیکن 5:30 کے بعد. ابھی اس وقت جو ہے جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی جو ہے وہ ہمارے سلطان بھائی, برامپٹن TV اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہیں, تو آپ ان کے پاس ضرور جاؤ بنڈل ڈیلز لینے کے لیے. نہ پھٹنے والے کپڑے اسپیئر اینڈ مکے, نئی لوکیشن اپنی پہ بریٹانیا روڈ پہ آ گئے, ان کے پاس آپ جائیے, بہت زبردست ان کے پاس اٹالین گل کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے, کیونکہ ویکینڈ آ رہا ہے, تو فیصل جڈا صاحب کے پاس جاؤ ویلج ٹیسٹ پہ, دو ان کے ریسٹورینٹس, ایک مسز آگا ایک اوک ویل میں, تو بہت اچھے آپ کو اوتھینٹک کھانے کھلاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اوتھینٹک ہمارے پاس جو ہیں وہ کوکس ہیں. اور جناب آپ نے اگر دند آپ کے خراب ہو گئے ہیں کھا کے یا پیلے پڑ گئے ہیں, تو آپ جو ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر نازیہ کے پاس جائیں, ڈینٹسٹری آن رجوے کے اوپر, اب ان کا دوسرا جو کھولا ہے ڈینٹسٹری آفس, اس کے اوپر آپ جائیں. اور اسلم بھائی ہوتے ہیں جی پائل جولرس پہ, پائل جولرس پہ جا کے ذرا ان کو ذرا پیار چیار دکھاؤ. اس واسطے کوئی بھی آپ کا جو گھر میں اوکیزن ہے تو بہت اچھے پرائس پہ آپ کو وہ گولڈ کا جیولری دیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ لائے ہوئے ہیں وہ دبئی سے, سنگاپور سے, انڈیا اور پاکستان سے. اوکے جناب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو خبر سنا دیں جی کہ 2 ٹرانٹونینز جو ہیں ان کے اوپر آج RCMP نے الیگیشنز یعنی چارجز لگائے, کرمنل چارجز لگائے ہیں, کیونکہ انہوں نے الیجلی اسکیم کیا ہے ہنڈریڈز آف انوسینٹ جو ہیں کینیڈینز, ان سے ملینز آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے لیے ہیں. اور یہ کرتے تھے کہ اپنا جو ہے بینک نمبر نہیں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم بینک سے کال کر رہے ہیں آپ کو, اور ان کو کافی ڈیسیو کرتے تھے. اور یہ جو ہے ساری کی ساری آج ڈیٹیلز جو ہیں RCMP نے ملٹن کے اندر دی ہیں. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس کینیڈا 40,000 سائبر کرائمز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے تھے جنوری سے جون 2024 میں, جس میں کہ فراڈ جو تھا 56% تھا, چائلڈ پرنوگرافی جو تھا 16% تھا, ہراسمنٹ کے 14 کیسز تھے, اور جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے ساری لسٹ ٹیک دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو کل ہم نے بتایا تھا نا کہ امریکہ نے کچھ ٹرانس نیشنل جو गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको अमेरिका ने कहा था कि भाई आप इनको लिस्ट करें। आज कनाडा ने भी उनके बारे में उनको लिस्ट किया है और कुछ बहुत सारी 7 एंटिटी जो है उनको अब टेररिस्ट कहा गया है। कनाडा के जो बड़े बड़े ग्रोसर्स हैं, सिर्फ बड़े ही नहीं वैसे छोटे भी, वो उनका एक सर्वे आया है सामने, तो अब पता चला है कि अपने शेल्व्स के ऊपर उन्होंने यूएस प्रोड्यूस के अलावा जो अल्टरनेटिव्स हैं वो रखने शुरू कर दिए। ग्रोसर्स का कहना है पहले भी हमारा प्यार कनाडा के साथ था, लेकिन चूंकि यूएस के साथ बड़ी दोस्ती थी, भाईचारा था, तो उनकी भी चीजें बेशुमार हमारे शेल्व्स पे होती थी। नाउ वी आर मूविंग अवे, अब हम होम ग्रोन प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा रख रहे हैं और अब बेटर है कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस और रिलायबल स्टेबल जो और जो हर वक्त चीजें मिलती रहे, तो उसके लिए दूसरे कुछ ब्रांड जो है उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम अब पीपल ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ ये ग्रोसर्स का डिसीजन नहीं है, क्योंकि लोग जो है लोग भी यूएस प्रोड्यूस से अब दूर जा रहे हैं। हेड ऑफ यूनियन दैट रिप्रेजेंट 27,000 टोरंटो सिटी वर्कर्स, वो शायद एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ जो है स्ट्राइक पे जा सकते हैं। उन्होंने एक्यूज किया है कि सिटी हॉल जो है वो बिल्कुल निगोसिएशंस जो है वो उनको ड्रैग करता जा रहा है, कर नहीं रहा है। क्यूब लोकल 79, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है टोरंटो के अंदर, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर हम स्ट्राइक पे गए तो आपके बहुत सारे जो भी मार्च ब्रेक आने वाला है उसके जो कैंप्स हैं और जो चाइल्ड केयर जो है जो जिसको कि सिटी रन करती है वो आपके शट डाउन हो जाएंगे। इन्होंने कहा जी कि हम एज अर्ली एज 12 AM मार्च 8 को ये शुरू कर सकते हैं, अगर डील हमारे साथ ना की टोरंटो सिटी ने। ये वर्कर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं टोरंटो के पब्लिक हेल्थ, सिटी हॉल ऑपरेशंस, एम्बुलेंस डिस्पैच, कोर्ट सर्विसेज, चाइल्ड केयर, लॉन्ग टर्म केयर। इसके अंदर मेन मुद्दा वही है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है हमारा वेजेस ऊपर नहीं गया है, तो मेन वही है कि भाई तनख्वाह हमारा बढ़ाओ। डेल्टा एयरलाइन का जो प्लेन जिसका के रैकेज अभी तक पड़ा हुआ था टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर, उसको आज रनवे से और टॉर्मिक से जो है वो रिमूव किया गया है। और इसके अलावा डेल्टा ने आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की है कि $30,000 ईच पैसेंजर जो कि इस प्लेन के ऊपर था, अगर वो चाहे तो हम उसको देने को तैयार हैं। ये टोटल करेगा 2.3 मिलियन जो है डॉलर्स। ये जो प्लेन था मित्सुबिशी CRJ-900 जो कि बम्बार्डियर ने बनाया था, इसमें बच गए थे सब लोग, और यही कहा गया था कि चूंकि तैयारा इतना मजबूत था, वरना मिरकल है ये, वरना तो सब लोग इसमें जैसे आग लग गया था वो उसमें मर सकते थे। इसके अलावा आज जो है वो यहां पे पियर्सन के ऊपर 5% जो आज कैंसिल हुए थे फ्लाइट्स, और 11% फ्लाइट्स जो है उन्होंने उनमें डिले आया था, 28% जो है वो पहुंचे डिले के साथ थे पियर्सन के ऊपर, और कल भी 6% जो फ्लाइट्स थे वो कैंसिल हुए थे। इसके साथ साथ जो टीडीसी है उसने भी कहा जी कि आईसी कंडीशन होने के की वजह से जो लाइन 2 है उसके ऊपर डिलेज चले, क्योंकि बैक टू बैक दो स्नो स्टॉर्म्स आए हैं, और कैनेडी ग्रीनवुड स्टेशन जो था वो सबसे ज्यादा हिट हुआ था और ट्रेन्स जो है वहां पे नहीं चल रहे थे, तो काफी इसमें लोगों को परेशानी रही। जर्मनी जो कि आपको पता ही है कि 27 नेशन EU की सबसे बड़ी जो है वो इकोनॉमी है और वन ऑफ द बिगेस्ट है, क्योंकि फ्रांस भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलस जो है वो कंट्री जरूर है EU स्टेट्स में। उसमें इमिग्रेशन, एलिंग इकोनॉमी, कैनबस, जेंडर पॉलिटिक्स, ये मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन संडे को जो है वहां पे आने वाले हैं। लोगों को कहा गया है कि आप जो है अपना अर्ली बैलेट जो है वो भी भेज सकते हैं, लेकिन जिस वक्त तक इलेक्शन का क्लोजिंग ना हो जाए उससे पहले तक, यानी कि संडे को 8 बजे से पहले आप वो भेज सकते हैं। इसमें 4 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी के जो इनकम्बेंट चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, जिनका ताल्लुक सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेट से है, और वाइस चांसलर जो है रॉबर्ट हेबेक, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रीन्स के साथ इनका ताल्लुक है, फ्रेडरिक मर्स कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से इनका ताल्लुक है, और अलीस वीडल जो कि फार राइट एंटी इमिग्रेशन अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD के साथ इनका ताल्लुक है, ये लोग इसके अंदर शामिल हैं। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अब प्रपोजल दिया है कि एलॉन मस्क साहब ये जिनको के दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी का, उसमें जो वो पैसे बचा रहे हैं, तो वो कुछ तो पैसे अमेरिकन्स को दिए जाएंगे और कुछ तो जो है गवर्नमेंट का डेट खत्म किया जाएगा। आज एक समिट जो हो रही थी सऊदी अरेबिया में जो कि उसके सॉवरन वेल्थ फंड ने किया हुआ था इन मायामी बीच, उसके ऊपर सऊदी में नहीं हो रही है, सऊदी अरेबिया ने कहा जो सॉवरन फंड है उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है मायामी बीच फ्लोरिडा में। तो उन्होंने कहा जी कि ये 20% सेविंग्स जो आएंगी इससे वो हम अमेरिकन्स जो हैं उनको देंगे, और 20% से हम फेडरल गवर्नमेंट का जो $36 ट्रिलियन US का जो डेट चल रहा है उसको पे करने में हम जो है वो यूज करेंगे। डॉज के एडवाइजर जेम्स फिशबैक, सीईओ ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म अजोरिया जो है, उन्होंने ये इनिशिएटिव प्रपोज किया था। एक 4 पेज का मेमो जो था उन्होंने अपने एक्स के ऊपर डाला था और उन्होंने कहा था कि अगर ये हाउस होल्ड टैक्स जो है ये पे कर दिया जाए और हर हाउस होल्ड को एटलीस्ट 5,000 US डॉलर दिए जाए तो अच्छा रहेगा, और बाकी का जो ये सेव करेंगे $2 ट्रिलियन वो बाकी का गवर्नमेंट जो है वो फिर यूज कर सकती है, और ये काम सारा जो है इनका खत्म होएगा बाय July 2026, जिसमें ये सारा फाइंड आउट करेंगे कि वेस्टफुल जो स्पेंडिंग है अमेरिका की वो कहां कहां हो रही है। ट्रंप साहब जो है उन्होंने आज फिर से बहुत स्केथिंग किस्म का जो है क्रिटिसिज्म डाला है अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर अगेंस्ट जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा जी कि ये बस हमारे से पैसे लेता जा रहा है और अपने मुल्क को जो है आग में झोंकते जा रहा है। उन्होंने कहा जी एक ये जो इन्वेस्टमेंट समिट जो सऊदी अरेबिया कर रहा है मियामी में, उसी में ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि इसने टेरेबल जॉब किया है, इसने यूक्रेन को शैटर कर दिया है कंप्लीटली, हजारों की तादाद में लोग अननेसेसरली मरे हैं, और ये जो है ये बस एक मॉडस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन था, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, और इसने जी आके बड़ा अमेरिकन को बेवकूफ बनाया, उनके साथ बात की एंड $350 बिलियन जो है ये लेके चला गया और सारे का सारा वॉर में लगा दिया, जो कि वॉर के बारे में इसको मालूम था कि ये जीत भी नहीं सकता है और इसको ये वॉर शुरू इन द फर्स्ट प्लेस करने ही नहीं चाहिए थी। इसके अपने खुद के अल्टीरियर मोटिव्स हैं और ये चाहता है कि यूक्रेन लड़ते चली जाए और ये टेरिटोरीज जो है ये भी जो है वो इसके पास वापस नहीं आएगी। ये उन्होंने पहले भी बात की थी, उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो दी है, मिसाल दी है, उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू कीप ग्रेवी ट्रेन गोइंग, यानी कि अमेरिकन पैसा ये चाहता है मेरे पास आता रहे और फंड्स आते रहे और ये जो वॉर है ये चलते रहे। यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, उन्होंने आज जो विजिटिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनको बोला है कि जो ये ट्रंप साहब का प्लान है कि डिस्प्लेस किया जाएगा पैलेस्टीनियंस को, वो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इसको। आपको पता ही है कि मार्को रूबियो 4 डे मिडल ईस्टर्न टूर के ऊपर है और इससे पहले वो इसराइल में बात कर चुके हैं। टैमी ब्रूस जो है स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो रूबियो साहब रीजन के अंदर खासतौर पर यूएई के साथ टॉक्स जो है या कि इससे पहले जो सऊदी के साथ हुई थी उसके अंदर ये फोकस करेंगे रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर, गाजा का जो सीज फायर डील है उसके ऊपर और यूएस कैप्टिव जो है उनको छुड़ाने के ऊपर। नाहियान जो है उन्होंने बताया रूबियो को, जिनकी की मीटिंग हो रही थी अबू धाबी में, कि जो है हम क्या कर सकते हैं गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से एक कॉम्प्रीहेंसिव पीस जो है रीजन के अंदर आए और बिल्कुल हम 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसी के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी कि इसराइल और पैलेस्टीनियंस जो है साथ साथ में रहेंगे, ये नहीं हो सकता कि पूरे इलाके के ऊपर जो है इसराइल कब्जा करेगा। यूके और फ्रांस जो है वो अब जिस तरह के तीखे सुर नजर आ रहे हैं ट्रंप साहब के, उसके रहते हुए उन्होंने कहा जी कि हम यूरोप को ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम यूक्रेन का जो फ्यूचर है उसको बचाएंगे और उसके सिटीज पोर्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए हम काम करेंगे और हम ये जो यूएस ब्रोकर डील है इसमें हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जिसमें लेस देन 30,000 ट्रूप्स जो हैं वो वहां पे जो है स्टेशन रहेंगे और हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एयर मैरीटाइम डिफेंस और उसके ऊपर और ग्राउंड फोर्सेज जो है वो मिनिमम रहेगा। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये जो हैं इनको डिप्लॉय करेंगे ईस्ट ऑफ यूक्रेन के पास ताकि एक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और यूएस यूक्रेन की जो एयर स्पेस है उसको कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी हम जो है वो ओपन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इनका जो सुई रूट है ब्लैक सी के ऊपर जो कि इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है फूड एंड ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए, उसको भी हम जो है वो प्रोटेक्शन देंगे। मोहम्मद यूनुस साहब जो कि हेड हैं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के, उनका मुलाकात जो है वो हो सकती है अप्रैल के महीने में मोदी जी के साथ ऑन द मार्जिन्स ऑफ BIMSTECTEC समिट जो कि बैंकॉक में हो रहा है उसके अंदर। मोदी जी जो है अभी तक उनका कुछ बायलैटरल टॉक्स नहीं हुआ है यूनुस साहब के पास जब से उन्होंने अपना रोल संभारा है ये इंटरिम हेड के तौर पर August 2024 में, जब से शेख हसीना जो थे भाग गए थे और चले गए थे इंडिया के अंदर, तब से इनके बीच में ताल्लुकात खराब है। इंडिया कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश को बोलता है कि आप हिंदू माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, ढाका बोलता है कि आप जो है हसीना को वापस करो ताकि जो उसने क्राइम्स किए हैं एलिजली उसको वो फेस करे, उसका ट्रायल हमें चला सके। तो ये अभी जो समिट होने वाला है श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंका के अंदर जो पहला एक समिट हुआ था वो तो वर्चुअल हुआ था, लेकिन ये इसमें जो है लोग अब मौजूद रहेंगे, ये जो बैंकॉक में हो रहा है, तो हो सकता है कि फेस टू फेस ये बैठे ऑन द साइड लाइन्स और बात भी करें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BIMSTEC, इसके अंदर 7 मेंबर्स है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। कतर के जो अमीर हैं जी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनकी आज मुलाकात जो है आयतुल्ला अली खामनाए जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ हुई है, और वेस्ट में और खासतौर पर अमरीका में इसके ऊपर काफी खलबली मची है। अब कतर के साथ बिगाड़ इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि कतर जो है हमास और इसराइल के जो निगोसिएशन है उसके अंदर मेन जो है की रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिकन को इस वक्त चाहिए है, उसके अमेरिकन जो फटे हुए हैं फंसे हुए हैं वहां पे उनको वापस चाहिए, तो लेकिन इसको बड़े आज उससे गुस्से में देखा गया है। ये जो हैं अली खामनाई साहब, ये प्रेसिडेंट भी हैं ईरान के, इन दोनों के बीच में आज रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज के बीच में बातचीत हुआ, और ये जो जो कुछ भी चल रहा है रीजन के अंदर सीरिया में गाजा में उस पर भी बातचीत हुई। खामनाई साहब ने कहा कि ईरान कतर को अपना ब्रदर्सली कंट्री समझता है, हालांकि कुछ अनरिजॉल्व इशू है जिसके ऊपर हमारे डिफरेंसेस है, क्योंकि तकरीबन $6 बिलियन जो है वो कतर के बैंक्स के अंदर फ्रीज किए गए हैं अंडर US सैंक्शंस, और इसको इससे पहले जो था वो साउथ कोरिया ने रिलीज किया था इन 2023, तो वो कहते हैं कि इन सब के ऊपर बात करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जो शेख हमद है वो अब क्या बातचीत करने के लिए इनसे गए हैं, दैट हैज टू बी यू नो सीन एट अ लेटर स्टेज, क्योंकि अभी तक कुछ डिटेल्स आया नहीं है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनका आज मुलाकात जो है हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के साथ उनके चीफ जस्टिस हाउस में इन इस्लामाबाद, और दोनों ने इकोनॉमिक सिचुएशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसके ऊपर बात किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को CJP ने खुद से इन्वाइट किया था, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स आहद खान चीमा, AGP मंसूर उस्मान आवान और बहुत सारे दूसरे लोग भी इस मीटिंग में मौजूद थे। PM साहब ने CJP को कॉन्ग्रेचुलेट किया उनके न्यू रोल के ऊपर, और उनको बोला जी के जो आपका ये जो इनिशिएटिव है कि आप विजिट करेंगे रिमोट एरियाज ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड KP टू कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर्स फॉर इफेक्टिव टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कि जो आपके बहुत लंबे पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, बहुत अरसे से पड़े हुए हैं, इनको टाइमली तरीके से खत्म करो। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो अब इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक स्पेशल सब कमिटी टू इंक्रीज पाकिस्तान एम्बेसीज जो है अब्रॉड उनका परफॉर्मेंस। MNA बिलाल अजहर कियानी जो है उसको अपॉइंट किया गया है एक 8 मेंबर सब कमेटी का कन्वीनर। इनका जो पहला मीटिंग है सब कमेटी का वो कल होने वाला है। इसके अंदर सेक्रेटरीज रहेंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कॉमर्स, फाइनेंस, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेन ऑफिस से। ये सारे जो है रिव्यू करेंगे जो पाकिस्तान के एम्बेसीज हैं या मिशन्स हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री, उनका परफॉर्मेंस और उनको जो चैलेंजेस आते हैं, और इसके बाद जो है वो एम्बेसडर्स को भी समन करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या इनपुट और सजेशंस है, चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है उन्होंने कहा जी कि टैक्स का कलेक्शन बहुत कम है, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको टैक्स कलेक्शन के लिए जो है लगाया जाएगा। आज एक जो कॉन्फ्रेंस है एट रिटेल री इमेजिन इनोवेट कोलैबोरेशन कोलैबोरेट एंड थ्राइव, उसमें बात कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो रिटेल सेक्टर है वो 19% टू GDP है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 1% ऑफ टैक्सेस देता है, इसकी वजह से जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है, जैसे कि सैलरीड क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। उन्होंने कहा जी कि जो बाकी के सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, इन सबको भी टैक्स नेट में लाना बहुत जरूरी है, और ऑलरेडी रिटेल सेक्टर से गवर्नमेंट बात कर रहा है, और ये नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी जो है यू टेक अ फ्री राइड, तो आपको कभी तो नेशनल एक्सचेकर में पैसे डालने पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जो है वो अब जी उन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उनको रिजेक्ट किया है ऑफ सुपीरियोरिटी रिप्रेजेंटेशन बाय इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक, और इन्होंने जो है पेव किया था वे टू अपॉइंट जस्टिस सरफराज डोगर एज एक्टिंग चीफ जस्टिस आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम लाहौर हाईकोर्ट। तो बाकी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ सीनियोरिटी के बेस पे होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस जस्टिसेज मोहसिन कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज खान, समन रिफत इम्तियाज, इन्होंने एक 49 पेज का पिटीशन डाला था थ्रू देयर काउंसल्स मुनीर मलिक एंड बैरिस्टर सलाउद्दीन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3 ऑफ آرٹیکل 184 اور انہوں نے کہا جی کہ 3 ججز کو سندھ، بلوچستان اور لاہور سے یہاں پہ اسلام آباد میں جب ٹرانسفر کیا تھا تو اس وقت بھی بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراض آیا تھا، کیونکہ جورس نے ڈوگر صاحب کا اپوائنٹمنٹ جو تھا اس کو بہت اس کے خلاف بولے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ کسی بھی اور ہائی کورٹ سے جب آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی جج کو تو اس کو پھر سے نیا اوتھ لینا چاہیے تاکہ اس کا جو سینیورٹی ہے وہ ری سیٹ ہو سکے، لیکن جو جسٹس عامر فاروق نے تھے انہوں نے اس کو آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا۔ انڈیا کے اندر سونیا گاندھی جو ہیں کانگریس پارٹی سے، وہ ان کو آج ایڈمٹ کیا گیا ہے سر گنگا رام ہاسپٹل میں دلی کے اندر۔ اکارڈنگ ٹو سورسز ویسے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن کس وقت ان کو داخل کیا، صبح یا کب، زیادہ تر کہا جا رہا ہے صبح ہی ان کو داخل کیا تو اس کے زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ روٹین چیک اپ کے بعد ان کو کل شاید ڈسچارج کیا جائے گا۔ سونیا گاندھی جو ہیں شی ٹرن 78 دس ڈسمبر اینڈ شی ول ریمین انڈر آبزرویشن فار اے ڈے۔ اب کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے اس کے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں۔ بی جے پی نے جناب آج بہت زیادہ خوشیاں منائی ہیں، بی جے پی کی ریکھا گپتا وہ شی ہیز بین سورن ان ایز دا نیو دلی چیف منسٹر۔ جب بی جے پی کو لینڈ سلائیڈ جو ہے وہ وکٹری یہاں پہ ہوئی آفٹر اوور 2 decades فار دا فرسٹ ٹائم، حالانکہ سینٹر کے اندر پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ سرکار بنائے بیٹھی ہے بی جے پی، لیکن پھر بھی جو ہے دلی کے اوپر قبضہ نہیں کر پائی تھی۔ گپتا جن کی ایج 50 years ہے وہ اب فورتھ وومن ہے جو کہ اب سرو کریں گی یہ جو سٹی ہے دلی کا 30 million کی جا کے پاپولیشن ہے اس کے اوپر، اور جو ہے دلی کے اوپر سرکار کا قبضہ یعنی کہ بی جے پی کی سرکار کا قبضہ 1998 سے نہیں تھا، لیکن اب جبکہ 2/3 majority ان کو ملی تھی فیبرری 5 کے الیکشن میں تو پھر جو ہے انہوں نے اپنا آج دلی کا چیف منسٹر بنایا ہے۔ گپتا کی جو ایج ہے 50 years ہے، شی ہیز اے لا ڈگری اور انہوں نے اپنا کریئر جو تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے دلی کے اندر ہی شروع کیا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ آئی نو دلی لائک یو نو بیک آف مائی ہینڈ، ان کو بہت اس سے پتا ہے۔ انڈیا کے اندر جناب جو ریپس ہیں وہ دبا دب چل رہے ہیں اور ان کو کسی طرح سے بھی روکا نہیں جا رہا ہے۔ ایک ویڈو بیچاری جو ہے وہ دلی کے اندر اس کو الیجلی گینگ ریپ کیا دو لوگوں نے گرو گرام میں، اور ان کے ساتھ دوستی اس نے کی تھی جو ہے انسٹاگرام کے اوپر، اور پھر انہوں نے اس کو بلایا اور پھر ایسے کیا تو ان کے خلاف جو ہے اب ایف آئی آر لکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنوکٹڈ سیریل ریپس تھا لیکن وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب جبکہ اس نے ایک اسپیشل چائلڈ ایک امپیئرڈ بچی جو ہے 11 سال صرف اس کی عمر تھی اس کو جب ریپ کیا ہے مدھیہ پردیش کے اندر تو اس کو پھر اب اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی ہائی کورٹ جو ہے اس نے ریفیوز کیا ہے ٹو کوش ایف آئی آر اگینسٹ عام آدمی پارٹی ایم پی سواتی مالیوال، کیونکہ انہوں نے ایک جو مائنر ریپ وکٹم تھا اس کے بارے میں بتا دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے پروویژنز آف جوونائل جسٹس ایکٹ، ان کو اس کا بچی کا بتانا نہیں چاہیے تھا، وکٹم کا نام اور اس کا آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان خان کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی ہالی ووڈ کے ساتھ کراس اوور مووی کی تھی میری گولڈ، لیکن اس کے بعد جو ہے سب جو ہے وہ یہ انڈسٹری ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ مووی جو تھی تقریباً بنائی گئی تھی کوئی 19 crore کے بجٹ کے اوپر، لیکن یہ صرف ریکوپ کر سکی تھی 2 crore ہی، حالانکہ اس کے اندر ہالی ووڈ کے سٹار تھے اور اس کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر ولرڈ کیرول نے، اور جو ایکٹریس تھی اس کے اندر تھی ایلی لارٹر، اور یہ مووی ریلیز ہوئی تھی August 17, 2007 میں، لیکن یہ اس مووی کا اتنے برے ریویو آئے تھے کہ ولرڈ کیرول نے جو تھے وہ حالانکہ امریکن فلم میکر تھے، اس کے بعد انہوں نے فلمیں بھی بنانا چھوڑ دیا اور پروڈیوس بھی کرنا چھوڑ دیا، اور ایلی جو تھی وہ بھی بڑا ویل نون فیس تھی ہالی ووڈ کے اندر، لیکن اس نے بھی پھر کہا کہ میری توبہ میں آئندہ کبھی ہندی فلموں میں کام نہیں کروں گی۔ ہیلتھ اسٹارٹ اپ آف ہما قریشی، اس کو جناب 1 crore rupees اب مل گئے ہیں شارک ٹینک انڈیا سے۔ ان کا یہ جو اسٹارٹ اپ ہے ماڈریٹ حیدرآباد بیسڈ ہیلتھ برانڈ ہے، اور اس کا جو ہے 5% ایکویٹی جو ہے اس کے لیے 2 sharks نے حامی بھری ہے۔ یہ ان کا ایک وہ کہتی ہیں جی کہ فلیگ شپ پروڈکٹ کیلوری کرشر ٹیبلٹ جو ہے اسٹارٹ اپ ہے، وہ کہتی ہیں جی کہ یہ جو ہے یہ ریڈیوس کرتا ہے کیلوریز کو اور کاربوہائیڈریٹ کو ابزارب نہیں ہونے دیتا ہے میلز کے اندر، جو کہ وہ ہما کہتی ہے میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میرے برانڈ کو ایسا ریکگنیشن ملا ہے۔ शाहरुख खान जो है उन्होंने भी कुछ बड़े सक्सेसफुल मूवीज में काम करने से ना किया था। 1999 की एक राजश्री प्रोडक्शंस की मूवी थी जो कि सूरज भरजतिया बना रहे थे, उस मूवी का नाम था हम साथ साथ है। तो जब उन्होंने शाहरुख खान को मूवी बताई तो उन्होंने नो कर दिया और ये मूवी जो थी सिर्फ 10 करोड़ के बजट से बनी थी और उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और उसने 80 करोड़ जो थे उस वक्त कमाए थे। फखर जमान साहब जो है उनको चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट किया गया है क्योंकि उसको एब्डोमिनल मसल इंजरी आ गया है, उसकी जगह पे इमाम उल हक जो है उसको रिप्लेस किया गया है। फखर जो था वो हर्ट हो गया था जब ये एक बॉल को चेस कर रहे थे जो ओपनर था इनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें, और बहुत देर तक ये फील्ड में नहीं थे और इसीलिए ओपन नहीं कर सके थे। नंबर 4 पे जिस वक्त बैटिंग के लिए आए थे तब भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे, सिर्फ 24 रन ही बना सके थे जबकि न्यूजीलैंड ने 320/5 बनाए थे और बैट्समैन को खेलना ना ज्यादा की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने फोल्ड किया फॉर 260। आईसीसी मैच रेफरी ने फाइन किया है 5% ऑफ मैच फी टू पाकिस्तान फॉर स्लो ओवर रेट इन द ओपनिंग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इनके ऊपर जो है वो सैंक्शन इम्पोज किए हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी मैच रेफरी जो है एज पाकिस्तान वॉज फाउंड टू बी 1 ओवर शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड टारगेट अंडर आर्टिकल 2.22 ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। कैप्टन जो रिजवान है उन्होंने ऑफेंस को एडमिट किया था तो इसलिए कोई इसके ऊपर अब फॉर्मल हियरिंग नहीं चलाया जाएगा। ये जो चार्जेस हैं ये इसके अलावा ऑन फील्ड एम्पायर जो हैं वो भी लेकर आए थे पाकिस्तान के खिलाफ जो के हैं शरफुद्दुल्ला और रिचर्ड कैटलबरो और थर्ड एम्पायर जोएल विल्सन एंड फोर्थ एम्पायर एलेक्स वार्फ। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, हालांकि बांग्लादेश के बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम शुरू किया था, 4 अर्ली विकेट्स लिए थे, विराट कोहली 22, रोहित शर्मा 41, श्रेयस अय्यर 15, अक्षर पटेल 8, लेकिन फिर भी वो अपना 229 रन का जो टारगेट था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये जो मैच चल रहा था उसको डिफेंड नहीं कर सके। इसमें शुभमन गिल ने अनबीटन 101/126 बॉल्स बनाया जिसने हेल्प किया इंडिया को 6 विकेट्स विन विद 21 बॉल्स लेफ्ट। केएल राहुल जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था शुभमन गिल को गो टू स्टडी द इनिंग्स जब 4 विकेट गिर गई थी। मोहम्मद शमी ने आज जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 5 विकेट्स/53 लिया। तौहीद रिदोए जो है बांग्लादेश के, हालांकि उसने अपना मेडन टन जो है बनाया, हालांकि उसको बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे और बार बार उसको जो है ऑन फील्ड उसको दिए जा रहे थे, ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन जो है बहुत इन्होंने कोशिश की कि बांग्लादेश रिकवर करे फ्रॉम 35 पे 5 जब आउट हो गए थे लेकिन सब जाया गया। इसकी जो पार्टनरशिप थी जाकर अली के साथ थी जिसमें कि उन्होंने 154 रन का पार्टनरशिप बनाया था। मोहम्मद रिजवान लेड जो पाकिस्तान स्क्वाड है जी वो अब कराची से वाई अ स्पेशल पाकिस्तान एयरफोर्स एयरक्राफ्ट दुबई पहुंच गए हैं फॉर अ क्लैश विद इंडिया एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑन संडे। इसके साथ 6 PCB के ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इनके साथ है। आज ये रेस्ट करेंगे और कल से ये जो है ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे एट आईसीसी क्रिकेट अकेडमी। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, वेरी रूड न्यूज बट दैट इज अ न्यूज। ट्रंप साहब जो है उसने अर्ज किया है यूएस हॉकी टीम को कि वो प्रिवेल करें इन अ वेरी क्लोजली वॉच्ड मैच विद 51st state, यानी कि किसको बोलते हैं 51st, कनाडा के साथ। वो कहते हैं जी कि ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, और उनका कमिटमेंट यह है कि उन्होंने एक रैली को एड्रेस करना है ऑफ यूएस गवर्नर्स इन वॉशिंगटन, तो इसलिए वो कहते हैं इन पर्सन आके तो मैं ये गेम अटेंड नहीं कर सकूंगा लेकिन मैं वॉच कर रहा हूंगा बहुत क्लोजली, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गवर्नर ट्रूडो जो है वो हमको ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट वेलकम। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आप एक हेड ऑफ द स्टेट के लिए कैसे ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रंप साहब, यू शुडन बी डूइंग दिस। जो ट्रूडो साहब है वो बहुत ही शरीफ आदमी है, वो आपको कुछ कहता नहीं है, कोई भी और होता बंदा तो बहुत ज्यादा आपके खिलाफ जो है ना इसके ऊपर प्रोटेस्ट शो करता, ये बेचारे कैनेडियन शरीफ लोग हैं आपको कुछ कहते नहीं है। तो जनाब ये थी हमारी आज की खबरें और जनाब हमारे साथ अब साकिब साहब जो है वो आगे हैं, तो साकिब खान साहब जो है उनके साथ हम जुड़ते हैं और उनसे हम आज बात करते हैं कि ये जो जबरदस्त किस्म का इंडिया का आज जो कहते हैं प्रदर्शन था और कल पाकिस्तान का बुरा प्रदर्शन था उसके ऊपर उनके क्या ख्याल हैं। तो हेलो साकिब, हाउ आर यू?
आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग?
जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है,
बिल्कुल ठीक ठाक जी।
अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान की जो माशाल्लाह खूबसूरत कल की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में?
अब कुछ रह गया कहने को,
एज एन एक्सपर्ट हम आपसे सुनना चाहते हैं।
एज एक्सपेक्टेड जो स्क्वाड था उनका और जो कंडीशंस को विशफुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, और न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा है, मेरे ख्याल में वो हमारी कंडीशंस को बहुत बेहतर समझ रहा है, जो कि हमारी होम कंडीशंस हैं, लेकिन लगा ऐसा रहा है कि जैसे न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा हो, फुली प्रिपेयर्ड। एक एक बंदे को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, ऑलरेडी वो दो मैच पाकिस्तान से जीत चुके थे, तो प्रेशर पाकिस्तान पे था और उसको फुली यूटिलाइज किया, और अनएक्सपेक्टेडली या अनफॉर्चुनेटली हम वो परफॉर्म नहीं कर सके जो उम्मीद थी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हम बेहतर खेले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
आपको क्या लग रहा है कि कहां पे लैग कर रहा है पाकिस्तान, बैटिंग मिडिल ऑर्डर में या बॉलर्स जो हैं वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या चक्कर है?
मेरे ख्याल जी सारे डिपार्टमेंट्स में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फील्डिंग, और उसकी शायद वजह बुनियादी यह है कि अगर आप इससे पहले के हमारे टूर्स देखें, जिसका आपके प्रोग्राम में कल भी कैसे साहब ने जिक्र किया था कि जिम्बाब्वे में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस हमने वनडे सीरीज जीती, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में उनको 3-0 से हराया, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमारी टीम को मिला था, और उस कॉम्बिनेशन को माई सवायद सैम अयूब के अनफॉर्चुनेट इंजरी के कोई और जरूरत नहीं थी उसको चेंज करने की, उस सारे सेटअप को चेंज करके प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को लाया गया जो कि पिछले एक साल से नहीं खेले, तो आप इसे अंदाजा लगा लें कि उसके बाद फिर टीम का क्या क्या कॉम्बिनेशन रह जाएगा, क्या उनका इफेक्टिवनेस होगी, क्या उनका मोराल होगा, तो काफी इश्यूज चल रहे हैं मेरे हिसाब से।
अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो क्रिकेट में जो है ना बहुत सारे पर्ची वाले लड़के आ गए हैं, जबकि आज मैं देख रही थी वसीम अकरम का बयान, उसने कहा जी इस लेवल पे पर्ची नहीं चलती है। आपका ख्याल है कि इस लेवल पे पर्ची नहीं चलती है, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हम किस तरह वो बहुत ही अनफिट आजम खान को लेकर चले गए थे, तो पर्चियां तो चलती हैं जनाब, क्या ख्याल है आपका?
नहीं, डेफिनेटली है जी, क्योंकि आप देखें ना, मुझे आप अगर हम इस बात को मान लें कि चलें इस लेवल पे ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या जस्टिफिकेशन बनती है ऐसे नए प्लेयर्स को जो ये राइट बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट ले आए हैं? आपने अगर इन प्लेयर्स को कंसिडर भी किया था, तो फिर कम से कम उनको कहीं मौका देते, इनको फिर भेजते इन टूर्स पे जहां बहुत टफ टूर्स थे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो लड़के खेल कर आते हैं, मेरे ख्याल में वो उनके एक टूर शायद हमारे डोमेस्टिक के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होता है, वो बड़े टफ टूर्स होते हैं, वहां लड़कों ने परफॉर्म किया, उनको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिली, और आपने फिर ऐसे प्लेयर्स को लिया जो किसी लोकल लीग में भी नहीं खेल रहे, तो अगर इसमें सिफारिश का या पर्ची का कोई आंसर नहीं है, तो फिर क्या वजूहत हो सकती है, फिर वो बता दें कि किस वजह से लोग लेकर आए हैं।
किन लड़कों का आप स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं, जिनको लेकर आए हैं और वो अच्छा नहीं कर रहे हैं?
देखिए, दो चेंजेस आई हैं उनमें, एक तो साउथ शकील को लेकर आए, वो तो खैर रेगुलर खेल रहा था, लेकिन उसकी कोई मेरे हिसाब से वो कोई वनडे का प्लेयर है नहीं, अब उसमें उसका कसूर नहीं है। आपने कल भी उसको अनफॉर्चुनेटली वो फखर जमान को जब इंजर्ड हुआ, तो आपने उसको एज एन ओपनर भेज दिया, वो कभी ओपनर कभी आया ही नहीं है, तो इस सूरत हाल में जब ये रन रेट में ज्यादा चाहिए था, ये मेरे ख्याल उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती होती है जो आप उसको ऐसे कंडीशन में ले आते हैं, तो एक सिर्फ शकील का गलत पोजिशन पे खेलना गलत है, दूसरा ये फहीम अशरफ को लेकर आए हैं, फहीम अशरफ सबको पता है कहीं ऐसे टीम में नहीं था, लीग्स में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, अगर तो या तो आप कहें ना कि किसी बाय की लीग में वो गया है, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, तो उसको आप मौका दे रहे हैं, तो ठीक है, इट मेक सेंस, कुछ दिलचस्प कुछ हद तक थोड़ा सा उसका बनता है, क्योंकि थोड़ी लीग्स में उसकी परफॉर्मेंस थी, डोमेस्टिक भी अच्छा खेल रहे और इन मैचेस में भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बाकी प्लेयर्स का स्पेसिफिकली फहीम अशरफ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस टीम में खेलने की।
आपको क्या लगता है कि इन दो की जगह कौन आ सकता था फिर?
देखिए, आपके पास बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक लेफ्ट हैंडर अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में भी गया था, जैन से नाम निकल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे थे, उसको ले आते आप, आपके पास अब्बास अफरीदी है, आप उसी को खिलाते, उसी को आप टूर पे लेकर भी गए, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। स्पिनर्स में आपके पास आप कहते हैं जी कि जो नौमान अली और साजिद खान है, इनके पास वनडे का एक्सपीरियंस नहीं है, खेल रहे थे साजिद खान को कितना टाइम लगेगा अडेप्ट होने के लिए, वो अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर है, नौमान इज एक्सलेंट स्पिनर, आपने इस ट्रैक्स पे अगर स्पिनर को अपराध के साथ एक बैकअप खिलाना ही था, तो उन दोनों में किसी को ला सकते थे आप।
अच्छा आपको क्या लग रहा है, कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि टीम का सिलेक्शन जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें जो रिजवान था वो कह रहा था नहीं ये बिल्कुल ठीक है और हमारी बिल्कुल हम यूनाइटेड हैं और हम बिल्कुल एक एज अ यूनिट खेलेंगे और क्या है। जब यूनिटी तो चलो ठीक है, अब कैप्टन ने कह दिया, लेकिन जब सिलेक्शन ठीक नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि लड़के बड़ा दिल लगा के जो है फिर वो खेलते हैं?
नहीं, फर्क पड़ता है जी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जाहिर है वो नहीं बता सकेंगे अगर कोई इश्यूज हो भी, लेकिन देखिए फर्क पड़ जाता है। मेरे ख्याल में कुछ जरूर इस टीम में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जैसे हम पे हम एतराज करें कि ऐसे प्लेयर्स को आप क्यों लाए हैं, तो शायद उनका भी वो सवाल बनता हो कि जी आपने क्यों ड्रॉप कर दिया अच्छे प्लेयर्स को और इनको ले आए हैं। तो वो फैक्टर जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर आप देखें जो लड़के ड्रॉप हुए हैं अच्छा परफॉर्म करके भी, टफ टूर्स पे जाके भी, अब आप सोचिए कि उनका फिर क्या क्या कमिटमेंट रह जाती है अगर दोबारा उनको मौका दिया गया, जब भी मौका दिया गया खेलने का। तो इन चीजों का जरूर फर्क पड़ता है, वो बेशक उस पर जिक्र ना करें ओपनली, लेकिन मेरे ख्याल में उनका फर्क पड़ता है टीम पे।
अच्छा ठीक है। अच्छा बाबर जो है वो बहुत ही उसका पता नहीं बैड पैच आया, जिस दिन से वो उसने वो जो दुबई में खेली थी इसने और रिजवान ने जबरदस्त किस्म की इनिंग इंडिया के खिलाफ, उसके बाद कहते हैं कि जो इसने हाथ मिला लिया है विराट कोहली से, इसका वो विराट कोहली का जिंक्स इसके अंदर ट्रांसफर हो गया है। आई मीन दीज आर जस्ट द मीम्स, बट आई एम जस्ट एस्किंग ऑन अ सीरियस नोट कि क्या चल रहा है, क्या मसले चल रहे हैं बाबर आजम के साथ, वो क्यों इतना एक उसको कहते थे मैन विद अ गोल्डन हैंड, तो वो अब उसके गोल्डन हैंड को क्या हो गया है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सक रहा है ठीक से?
बाबर एक तो है डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म है, वो एक फैक्टर है और हर एक प्लेयर्स के साथ होता है। कोहली का आपने जिक्र किया तो कोहली भी ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, अभी भी कोई वो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन चौरक चल रहा है उनका। तो बाबर का एक तो बैच चल रहा है, दूसरा ये कि टीम ने उनको बाकी टीम्स ने वो बड़ा रेगुलरली जी बड़ा आपको पता है कि हर टीम के साथ एक दो बंदे ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ एनालाइज करना होता है, वो बाकायदा बाय प्रोफेशन एनालिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और वो इन चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर आप कल का ही मैच देखें जब बाबर ओपनिंग के लिए आए, अगर आप न्यूजीलैंड की फील्ड देखते स्पेशली ऑन साइड पे, तो उन्होंने वो उन एरियाज को एक तो उस लेंथ पे खिला रहे थे जहां बाबर के लिए खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ड्राइव वगैरह करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि शुरू में बाबर आजम को व्हेन ही ड्राइव्स और ही हिट्स अ कपल ऑफ ड्राइव्स वो ऑटोमेटिकली उसको एक अच्छा लगता है, वो फॉर्म में आ जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है। तो एक तो उन्होंने उनको खेलने का मौका नहीं दिया, फील्ड उन्होंने ऐसे सेट की हुई थी कि 30 यार्ड से बाहर बॉल जा ही नहीं रहा था। तो ये तो फैक्टर्स हैं, आई थिंक उनको लोगों प्लेयर्स ने भी अब देख लिया है कि उनको किस तरीके से कंटेन किया जा सकता है अपोजिशन टीम्स ने, तो वो इस किस्म की बॉलिंग भी उनको करा रहे हैं, उसी किस्म की फील्ड भी उनको रख रहे हैं और प्लस उनका बैट पेस भी चल रहा है, तो ये सब चीजें हैं और इनको अब यहीं पे आके आपकी ग्रेटनेस का पता चलता है। आप अगर इतने अच्छे प्लेयर हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या डिफरेंट करना चाहिए, कुछ रिस्क जरूर लेने चाहिए, वो जिस तरीके से आप पिछले 8-10 सालों से खेलते आए हैं शायद आप उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़े, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़े, अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़े और यहीं आपको पता चलेगा कि आप फिर किस तरीके से वापस आते हैं, अपने आप को लेकर आते हैं वापस।
अच्छा ठीक है। अच्छा आपको अब क्या लग रहा है कि संडे को जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मुझे तो बहुत ही टफ लग रहा है, जो इंडिया की इस वक्त फॉर्म है, जो उसके लड़के इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत टफ मैच रहने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया हराएगी पाकिस्तान को, आप क्या कह रहे हो?
ऑन पेपर आप 100% एग्री, बहुत फॉर्म में है और हमारी हमारी उसी अनफॉर्चुनेटली हमारा बड़ा एक बैड पैच चल रहा है, लेकिन ऑन अ गिवन डे एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, उसको आप डेफिनेटली वो फैक्टर रही है। सो इफ पाकिस्तान आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है, वो कभी कभी हमारे एडवांटेज में, कभी ज्यादा डिसएडवांटेज में जाता है, लेकिन कभी कभार वो फैक्टर हमारे एडवांटेज में भी चला जाता है। तो ये न्यूजीलैंड से कंटिन्यूसली हारना, क्रिटिसिज्म फेल करना, फिर वो डेफिनेटली जब आप इंडिया के साथ खेलते हैं आपकी एक और ही लेवल होता है, यू वॉन्ट टू डू वेल, यू वॉन्ट टू बीट इंडिया। तो उन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए तो मैं रूल आउट तो नहीं करूंगा चांसेस हमारे, लेकिन आपकी बात सही है कि टफ जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
अच्छा देखिए, आज जैसे शमी ने बॉलिंग की है ना, 5 विकेटें ली हैं फॉर 53, जबकि हमारे जो बॉलर्स हैं जिनको के ऊपर हमें बड़ा नाज था, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी है ना, 60 रन देके एक आउट कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बॉलिंग है भाई, और ये क्यों कंट्रोल नहीं है, क्यों उसको सुधारा नहीं जा रहा और क्यों उसको ठीक नहीं किया जा रहा? ये लड़के जो थे ये तो हमारे स्टार्स थे, ये शाहीन शाह और नसीम शाह एंड ऑल दोस, तो इनको क्या हो रहा है, क्या हो गया इनको, क्यों नहीं इससे अच्छी बॉलिंग हो रही है?
देखिए थोड़े, एक तो शमी ने अगर आज 5 विकेट ली नहीं है तो दुबई के पिचेस रिलेटिवली पाकिस्तान की पिचेस से फिर भी बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो सपोर्ट करती हैं। आपने देखा शमी का बॉल काफी सीम हो रहा था, मूव हो रहा था, स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिल रही थी। हमारी वाली स्लो विकेट्स हैं, स्पिनर्स को ज्यादा यहां मिलती है, स्पिनर्स का एडवांटेज होता है। फास्ट बॉलिंग आपको वो जो जिस तरीके से आप नॉर्मली कराते हैं, जिन लेंथ पे आप कराते हैं, खासकर स्विंग कराने के लिए, वो लेंथ यहां नहीं चलेंगी। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आपने देखें, आप शाहीन फ्रीदी हो गया, शाहीन तो फ्री भी थोड़ा बहुत पेस चेंज कर लेता है, लेकिन अगर आप हारिस रूफ को देखें तो वो सवाए एक आध स्लो कराने के मैक्सिमम टाइम वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी पेस से विकेटें लें, जो कि इन विकेट्स पे नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो आपको अपनी अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस के ऊपर, और थोड़ा सा इनोवेटिव होकर बॉलिंग कराना पड़ेगा, और यही वजह है कि आप वो जो एक तरीके से बॉल करा रहे हैं वो नहीं चलेगा यहां पर, खासकर पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर।
आपको क्या लगता है साकिब के जो कैप्टन का रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है? रिजवान जो है उसका कोई इतना जोर है लड़कों के ऊपर, कोई दबदबा जो होता है एक कैप्टन का वैसा है वो लड़कों का, लड़के उसकी सुनते होंगे? आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये खिला रहा है लड़कों को, सही खिला रहा है आपके ख्याल में?
रिजवान अगर आप देखें, काम कंपोज सा प्लेयर है और बाय नेचर एक अच्छा इंसान है, तो जाहिर है वो जो आपने कहा है वो कैप्टन का एक दबदबा होता है या थोड़ा सा डर वाला फैक्टर आप कह लें, वो मेरा नहीं ख्याल कि इनका है। अच्छा भी है, वो ज्यादा प्रेशर नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा आपको वो जरूरत होती है उन चीजों की। मैं कल के मैच में भी देख रहा था, जब मिसफील्ड हो रही थी, बॉलर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि एक दो ओकेजन पे रिजवान ने कहा कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वो आप इंकरेज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब फील्डर मिस करते हैं तो वो जब कैप्टन, उनको पता होता है कि यार वो नाराज होगा या गुस्से वाला है, तो वो फिर उस तरफ देखते ही नहीं है, वो बाउंड्री की दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो भी एक फैक्टर चाहिए, लेकिन रिजवान का इतनी चीजों पे ग्रिप नहीं है, मैं उससे शायद अभी सीख भी रहा होगा, एक्सपीरियंस उनका काफी है, लेकिन हो सकता है फिर बाकी सीनियर प्लेयर्स हों उनको उस तरीके से वो नहीं बता सकता हुआ चीजें जैसे वो बताता है, तो है वो ऐसा डोसाइल सा। प्रॉब्ली दैट्स ऑल्सो वन थिंग विच शी इज लैकिंग एट द मोमेंट।
जैसे कि इंडिया में भी थे ना वो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो उनको भी कैप्टन कूल कहा जाता था, लेकिन उसकी ग्रिप काफी थी, लड़के उससे डरते बहुत थे, तो उससे वो खेलते हैं। अच्छा, अब जो है ये जो मैच ऑफ ऑल मदर्स जो है वो तो अब संडे को ही है, तो अब आप क्या सजेस्ट कोई करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं आपके पास पाकिस्तान टीम के लिए, क्या उनको देखना, क्योंकि ये भी एक तरह से उनकी होम ग्राउंड है, पर क्योंकि दुबई में सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, यानी कि इन रीसेंट पास्ट जो है उसके अंदर, तो ये भी एक होम ग्राउंड की तरह की ग्राउंड है, तो क्या आप कहना चाहते हैं टीम को, क्या देखो, कहां पर इम्प्रूव करो, किधर आपको ज्यादा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा?
देखिए, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है इस टीम के लिए कि ठीक है, वो न्यूजीलैंड से अगर लगातार 3 मैचेस हारे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब ये इनकी कैप्टन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, जो मैनेजमेंट है उन पर डिपेंड करता है कि उनको एक पॉजिटिव फ्रेम में लेके जाए। क्रिटिसिज्म उन पर काफी हो रहा है तो वो प्रेशर भी उन पर होगा। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ रखें और फिर चीजें को डिफरेंट करें। अगर आपको पता है कि आज जिस जो कॉम्बिनेशन 11 प्लेयर्स का है, जो बैटिंग ऑर्डर है, जो बॉलिंग का ऑर्डर है, अगर उससे चीजें नहीं चल रही तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। दिस इज अ मेक और ब्रेक गेम फॉर यू। अगर आप 2 मैचेस इस फॉर्मेट में हार जाते हैं तो आपका फिर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये आप इन अ वे अपने लिए एक नॉकआउट गेम लेके चलें, तो अब यू हैव नथिंग टू लूज। अपने ہار گئے ہیں, لوگوں سے آپ نے گالیاں بھی سن لی, تنقید بھی سن لی, تو اب یہ ایک ٹائم ہے کچھ ڈفرنٹ کریں, کچھ بیٹنگ آرڈر کو چینج کریں, کچھ بالنگ کو چینج کریں. اب ظاہر ہے وہ نئے پلیئرز آف اس ٹائم پہ نہیں لا سکتے جو پہلے شروع سے کھیلنے چاہیے تھے, وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو لوٹ ہے اس کے ساتھ ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, کچھ ڈفرنٹ کریں اور دلیری سے کھیلیں, یہ بہت ضروری ہے. وہ ایک شیل میں گھس کے نہ کھیلیں, یہ نہ ہو کہ 15 یا 20 اوور میں پتہ چل جائے کہ یار یہ میچ تو ختم ہے, یہ آج کچھ نہیں کر سکتے, وہ کم از کم فیلنگ نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے دیکھی نیوزی لینڈ کے خلاف.
جی ثاقب صاحب کیسے ہیں, عامر بات کر رہا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان ٹیم کا جو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایک تو انڈر ڈاگ کھیلتی رہی ہے, لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, آپ کو معلوم ہے 8 ہی ٹیم ہے, ایک میچ ہم آلریڈی ہار چکے ہیں, اور اب ہمارا مجھے لگتا ہے کہ جو سیکوینس بھی ہے وہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی پاکستان کے ساتھ, پہلا میچ نیوزی لینڈ, دوسرا میچ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا اگر یہ بنگلہ دیش آگے پیچھے بیچ میں کہا جاتا تو ایک آپ کو اچھا مومینٹم بلڈ ہونے کے لیے مل جاتا, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ پیپر پر تو بہت سی بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں سر وہ اسٹرانگ لگتی تھی, لیکن پاکستان نے اگلے دن صبح ان کو جو ہے وہ بہت بری طرح ہرا دیا. تو ایز اے پاکستانی میں بھی یہی اس کو امید کروں گا, سپورٹ کروں گا پاکستان کو کہ انشاءاللہ جو سنڈے کو جب یہ میچ ہوگا انڈیا کے ساتھ تو بہت ہی ایک اچھا پرفارمنس دیں گی اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا بھی. بات ہو رہی تھی کل بھی, ہماری بات ہو رہی تھی کیسے صغیر صاحب سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم میڈل آرڈر میں مار کھا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میڈل آرڈر جو 5 نمبر پہ 6 نمبر پہ 4 5 6 نمبر پہ کھیلنے والا ہو, جیسے کہ انضمام الحق ہو, یوسف صاحب ہوں, محمد ایک اور میں دیں گے نام بھول رہا ہوں, ہمارے بہت اچھے بیٹسمین تھے جو 5 6 یہ شعیب ملک ہوں, وہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پلیئر چاہیے؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ فخر کی جگہ امام کو لے آئے, کل بھی قیصر بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ امام کو آنا چاہیے,
اب امام آ گیا,
اب امام فخر کو ریپلیس کر کے امام آ گئے, لیکن مڈل آرڈر بیٹسمین میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ انف ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ وہ کمپیٹنٹ ہے؟
مڈل آرڈر ہے جی, لیکن آپ نے دیکھا نا آپ کے جو مڈل آرڈر کے پلیئرز ہیں جیسے آپ ٹیسٹ میں آپ دیکھیں یہی سعود شکیل, سلمان, علی آغا, رضوان, یہ اسینشلی آپ کو سپورٹ دیتے ہیں مڈل میں, ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو ون ڈے میں آگے بھیجنا شروع کر دیا, اگر آپ اب جیسے آپ نے کہا ابھی امام آ گئے ہیں, اگر آپ کے اوپنر امام ہو, فخر ہو, فٹ ہو, وہ دونوں کھیلیں, بابر کو ضرور آپ ون ڈاؤن ہی کھلائیں, وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو اب اوپن کرانے کی اور ضرورت ہے, آپ اچھے اوپنرز, آپ اسٹیبلش اوپنرز آ جائیں, آپ اس کو کھلائیں ایز اے ون ڈاؤن, آپ کے پیچھے رضوان ہے تو دیٹ آٹومیٹک,
نہیں نہیں آپ بولیے بولیے, ہاں جی آواز آ رہی ہے,
آٹومیٹکلی آپ کے پاس آٹومیٹکلی یہ بندے نیچے جب آئیں گے نا تو آپ کو مڈل آرڈر میں سپورٹ دینا شروع کر دیں گے. سعود شکیل از اے گڈ مڈل آرڈر بیٹسمین, ٹیسٹ میں تو اس نے وہی پرفارم کیا ہے, پریشر سچویشن میں آپ کی وکٹ بھی روک سکتا ہے, آپ کے رنز بھی نکال سکتا ہے, یہ آ جائے گا سلمان آ جائے گا وہ مڈل تک کھیلے تو پھر آپ کو ٹھیک ہوگا, لیکن یہ آپ ان کو آگے نہیں بھیج سکتے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, پلیئرز تو ہمیں چاہیے ضرور, لیکن فی الحال اگر آپ کے پاس اور تو نہیں آ سکتے تو انہی سے آپ اس طریقے سے لے کر چلیں کہ یہ پھر مڈل میں آ کے کھیلیں نا, آپ نے ان کا آرڈر ہی بالکل غلط کیا ہوا ہے اس ون ڈیز میں.
تو پلان بھی ہمارے پاس کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی زندگی میں پلان بھی ہوتا ہے ہمارے پاس؟
جی جی بالکل ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ جانے ماز نکال کے سارے بیٹھ جائیں اور پھر یہ کہ ادھر بارش ہو جائے, ادھر 20 اوور میں اتنے رن بن جائیں, ان کا پلیئر انجرڈ ہو جائے, یہ پلان بی ہوتا ہے ہمیشہ.
اچھا تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں, آپ نے جانماز بچھانی ہے بیٹے کو, پھر
جائیں گے جمعہ جی نفل پڑھ کر آئیں گے.
چلو جی ٹھیک ہے, پھر ہم بھی کل جمعہ کا دن ہے, ہم بھی اب جو ہے نمازیں پڑھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح انڈیا کا کوئی انجر ہو جائے, شبمن گل انجر ہو جائے, نکل جائے, جلدی آؤٹ ہو جائے اور بارش ادھر تھوڑی ہلکی سی شروع ہو جائے, اوورز کم ہو جائے اور ہم جیت جائیں. چلو جی ہم یہی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے ثاقب, تھینک یو ویری مچ فار جوائنگ اس, تو ہم آپ نیکسٹ ویک پھر سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے, اور اوور ٹو یو جی عامر صاحب.
چلیں جی ثاقب صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جو ہے آنے والے وقت میں اور بھی بات چیت کریں گے, بہت شکریہ. خدا حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ ثاقب صاحب, کرکٹ ایکسپرٹ, اور میرا تو ماننا یہ ہے ایز این پاکستانی آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ سنڈے کو جیت جائے گا. آئی نو بہت سارے انڈینز فین بھی ہمارے سن لوں گے,
ایم کیو ایم تو کہتے نہیں
تھے اباؤٹ منی, ٹریک ریکارڈ بھی ایسے ہی رہا
ہے, ہم کرانچی سے ہیں.
نہیں ہم پاکستان سے, سب سے پہلے پاکستان, پاکستان سے. اب کراچی ہے تو ہے, اب کیا انکاری تو نہیں کر سکتے نا, اب آپ اپنے ماں باپ کا نام تو چینج نہیں کر سکتے.
بڑا پیارا کیا ہوا آج کل تو کراچی انہوں نے, بڑا پیارا کیا ہے. اور یہ جو اتنے بڑے اعتراض, تمہیں یاد ہے لاسٹ ایئر کتنے اعتراض کیے تھے ٹریفک کے مسئلے سے, ذیشان نے بڑا اعتراض کیا تھا, اس وقت انہوں نے وہ ٹریفک بھی ساری سیدھی کر دی ہے.
دیکھیں
بڑے بڑے شہروں میں ہوتا رہتا ہے ایسے, چھوٹے میں کم
ڈھائی تین کروڑ کی آبادی ہے اس کے شہر میں, دل میں اسٹیڈیم بنا دیا ہے نیشنل اسٹیڈیم, یہ سب مسئلے ہیں.
کوئی مسئلے نہیں اب تو,
اب گھبرانا نہیں, آپ
گھبرانا نہیں.
جناب بہت شکریہ سر جی آپ کا, انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ زندہ رہیں.
ہاں جی,
تو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات.
ٹھیک ہے جی,
تمام سامعین کا ناظرین کا ہمارے ساتھ بہت شکریہ شامل ہونے کا. اب سے کچھ دیر کے بعد ہم اذان کا بریک لیں گے, اذان کے بعد آپ پروگرام سن سکیں گے. شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور عارف مظفر صاحبہ کی بات چیت ہے ان کے اوپر, کچھ فواد چودھری کے ساتھ تو میم ہوئی ہے, کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں, جو ہے انہوں نے بتایا کچھ اندر کی باتیں, تو یہ سب آپ سن سکیں گے 6:05 پہ. تقریباً 7 بجے لیاقت ملک صاحب جو ہیں وہ رنگا رنگ پروگرام بھولی بسری یادیں لے کر آئیں گے, تو آپ سن سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے ای آواز ٹی وی پر. بھولی بسری یادیں آپ ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر, اس کے علاوہ 6478724900 ڈائل کر کے آپ سن سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن 24 آورز. چلیں جناب پوری مینجمنٹ کی طرف سے, عارف مظفر صاحب کی طرف سے, ماجد جمال صاحب کی طرف سے اور ہمارے انجینئر ذیشان احمد کی طرف سے اجازت دیجیے. میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد, انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی, تو کل پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.
میرا شعر کیا, میرا ذکر کیا, میری بات کیا, میری فکر کیا, میری بات ان کے سبب سے ہے, میرا شعر ان کے ادب سے ہے, میرا ذکر ان کے طفیل سے, میری فکر ان کے طفیل سے, کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا, میں تو پنجتن کا غلام, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
سامعین کرام, ٹورانٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا, تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, الفلاح, حي على الفلاح